आमार सोनार बांग्ला। कुछ यात्राएं बाहरी होती हैं, कुछ मन की, लेकिन हर बाहरी यात्रा आपके साथ कोई जादू करती है, आपको बदलती चलती है। बांग्लादेश की ऐसी ही एक यात्रा के बारे में बता रही हैं प्रत्यक्षा। इब्न बतूता कह गए कि सफ़र आपको निशब्द करता है और फिर आपको किस्सा गो में तब्दील करता है, लेकिन उस जगह जाना जो आपकी अपनी ही जगह है, किसी पिछले जन्म की दुनिया, किसी बचपन में पढ़ी किताब की बहुत अतरंग तरल दुनिया, वहाँ आप क्या किस्सा गो हों? वहाँ आप भीतर उतरते चलते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, गहरे मन के अतल को छूते समझते, किसी गुनगुनाहट से भरते तरल ऊष्म संसार, जैसे जुबान के भीतर गर्म एक स्वाद खोया हुआ। बांग्लादेश कोई अलग दुनिया कहाँ? वहाँ पहुँचना किसी विदेशी धरती पर पाँव रखना कहाँ? ढाका एयरपोर्ट पर उतरते एक दुनिया दिखती है, लस्टम पस्टम धीमे ढाले, जैसे किसी छोटे शहर के व्यस्तम बस अड्डे पर पहुँचे किसी भयानक चकर मकर की दुनिया के बीच धस गए हों। जाने के पहले वीज़ा का चक्कर था, एम्बेसी में किसी अधिकारी से मिलना था, वहाँ इंतज़ार करते कॉफ़ी टेबल बुक को पलटती रही बांग्लादेश पर तमाम जानकारियाँ, उनकी स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, रहन सहन सब। मैं जिज्ञासा में पलट रही थी, भारत, इंदिरा गांधी, 71 की लड़ाई, कुछ न दिखा, शायद एक पंक्ति फुटनोट भारत के रोल पर। सच देखने के सचमुच अलग नज़रिए होते हैं। वाल्टज विद बशीर की याद आती रही। हम जो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि मुक्त वाहिनी के समर्थन में कैसे भारत इतना सक्रिय रहा, किस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सातवें बेड़े का मुकाबला किया, जनरल नियाजी और लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा का वो ऐतिहासिक चित्र कैसे हमारे सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, यहाँ सिरे से गायब था। एक सच उनका था, एक हमारा, पूरा सच जाने कहाँ है। 14 जनवरी को ढाका पहुँचना मेरे लिए उस दुनिया को देखने का सुख था जो मेरे जैसे इतिहास के पढ़वाइये के लिए उस हरे भरे मन के कोने को छू लेने की लालसा के पूर्ति का पल था। कुछ जगह जाना ही था, आज ये भी हुआ। जुलूस रेणु की याद आती रही। एनी आपा यानी कुर्तलेन हैदर मेरे साथ थीं, आखिरी शब के हमसफर। कलकत्ता के तंग गलियों सी गलियां, जाली लगे जेल से ऑटो रिक्शे, पुरानी रंग उड़ी बसें, भीड़ रजगज। मैं लोगों को आंखें फाड़े देखती हूँ, लड़कियां सलवार कमीज साड़ी में, काले बुरके में, सिंदूर और सल्लज मुस्कान में, हाजियों की भीड़, व्यापारियों की भीड़, बड़े बड़े कार्टस और पैक्ड सामान जो बाहर से लाया गया, एकदम कचर मचर। बनानी स्ट्रीट में कोई होटल होए न टोल, कमरा अंधेरा सा, भारी पर्दे और भारी कारपेट, किसी भी होटल का कमरा, कहीं का भी हो सकता है, टीवी ऑन किया, अल्लाह बरकत लॉकेट का ऐड चल रहा है, इसे पहनने से अल्लाह की रहमत बरसेगी, अल्लाह आशीर्वाद सोबे सुमाए था के। पति पत्नी के बीच समस्या, शरीर की पीड़ा, लड़की का ब्याह, जादू टोने से बचाव, नौकरी यानी सब समस्या का समाधान। आह, हम सब अपने दुखों की कमजोरियों में कितने एक हैं। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उसे खोजें या अपने भय और दुख के संबल की खोज में उसे रचा। विज्ञापन देखने में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि बांग्ला भाषा में बीच बीच में उर्दू का मिश्रण बहुत मीठा, फिर अचानक बीच में हिंदी में गीत, ये हैं बरकती लॉकेट, जो भी हो इसको अपना लेगा, अल्लाह राह निकालेगा, ठाकुर अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मज़े का सम्मिश्रण है, ठाकुर भी हैं, अल्लाह भी, बांग्ला भी, हिंदी भी, उर्दू भी, ऐसी ही दुनिया होनी चाहिए। कहते हैं ढाका 1000 साल पहले बसा, लेकिन उसकी शान में 4 चांद लगे 17वीं सदी में, जब मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बना। ढाका का 75 सालों तक बंगाल की राजधानी रहा, मलमल के कपड़ों का केंद्र। तब बादशाह जहांगीर के नाम पर उसे जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता रहा। मुगलों ने अपने ट्रेडमार्क बाग बगीचे, मकबरे, मस्जिदें, किले बनाए और एक वक्त में उसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता रहा। बाद में अंग्रेजों के ज़माने में बिजली आई, रेल आया, विश्वविद्यालय बने, आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी यहाँ बनी और 1971 में आज़ाद बांग्लादेश की राजधानी। बंगाली मुगल अंग्रेज संस्कृति का क्या अजूबा मिश्रण। ढाका में सब तरह के लोग दिखते हैं जो पुराने बाशिंदे हैं। ढाकाई उनकी बोली में खास छाप है। यहाँ कई बिहारी प्रवासी मुसलमान शरणार्थी भी बसे हैं जो 1947 के दौरान पूर्वी भारत से आए और पूर्वी पाकिस्तान में बस गए। यहाँ की भाषा बांग्ला है और कई अलग तरह की बोलियाँ जैसे सिलहटी और चित्तागोनिया भी बोली जाती हैं। कामकाज की भाषा उर्दू है। ढाकाई खाने की भी बात अलग है। कहीं बैठते हैं हम तो कई रेस्तरां दाल चावल करेला सेम का चोखा और दाल का चोखा, फिर अंत में रूप चांदा माने चांदी के रंग की मछली माने पॉम्फ्रेट। अभी पोद्दा नदी के इलीश माछ का समय नहीं, वो अगली बार। और बांग्लादेश, दोनों के खाने में मछली प्रमुखता से आती है, लेकिन बांग्लादेश में मुगल प्रभाव और धर्म के अनुरूप गोमांस भी खूब प्रचलित है। फिर भी शाकाहारी खाना खूब मिलता है और शाक सब्जी के लहलहाते खेत ढाका से कोमिल्ला जाते खूब दिखे। तालाब भी खूब थे, हर दो घर पर एक तालाब। यहाँ के खाने में मसाले एक जीवंतता से स्वाद में मुखरित होते हैं। सरसों के तेल, पोस्ता और तीखे मिर्च का स्वाद खाने में विशिष्ट रस का आस्वाद देते हैं। बांग्लादेश के खाने में मुगल खाने का जायका है और अरबी और फारसी खाने का एक तत्व। बीफ कबाब, दाल और चटनी, मटन और बीफ बिरयानी, तहरी हर जगह मिलते हैं। हमारी तरफ बंगाल में जबकि बिरयानी में आलू, अंडा और मछली भी डलता है। मटन प्याज, गरम मसाला और तेज पत्ता डाला तहरी 70 साल पुराने हजीर बिरयानी रेस्तरा में, जो काजी अलाउद्दीन रोड नज़ीरा बाज़ार में स्थित हैं। एक बार खा आना चाहिए। पुराने शहर में मुर्ग पुलाव जिसमें मलाई और हल्दी दोनों पड़ता है, फिर बाकर खानी रोटी, पोता का इलिश, कितनी चीज़ें चखने को हैं। ढाका में बहुत से पार्क हैं, रमना पार्क, सुहरावर्दी उद्यान, गुलशन पार्क, होटल के पास बनानी लेक है, हाथीर झील के किनारे रिवर फ्रंट अच्छा रजगज और खूबसूरत। कहानी यूँ है कि भवल राजा अपने पालतू हाथी पिलखाना में रखते थे। हाथियों को हाथीर पुल के रास्ते ले जाया जाता, यहीं पर वो नहाते भी थे। रात को हाथीर झील रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठता है, खासकर उस पर बने पुल खूब रोशन और चकमक रहते हैं। यूनिवर्सिटी इलाके में युवक युवतियाँ दिखते हैं, वहीं ऊर्जा से भरा माहौल। रास्ते भर लोग दिखते हैं, साड़ी पहने औरतें, बुरके में औरतें, दाढ़ी वाले आदमी, दाढ़ी सफ़ा आदमी, जाली वाले बंद ऑटो रिक्शा, चीसे हुए बस, पुराना पलटन, मालीबाग, आफ्ताब नगर, हाथीर झील में स्टीमर, सोनाली बैंक, दीपांकर रॉय, मऊद्दीन, ढाकेश्वरी मंदिर, सदर घाट, आर्मेनियन चर्च, शहीद मीनार। कोलकाता के वनस्पति ढाका में मुख्य न्यायालय भवन के अलावा औपनिवेशिक विरासत की कोई इमारत नहीं है। अगर कोलकाता से तुलना करें तो ढाका ज़रा अनियोजित, नया, शोरगुल से भरा, बेतरतीब, कचर मचर विकास की दुनिया है। सड़क पर ठेले में पकौड़ी, अंडे वाली लूची, कोमिल्ला, मई मनसिंह, चित्तगोंग, सिलहट, राजशाही पावना, कॉक्स बाजार, हाथ में शंख, पैर में चप्पल, ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर लड़के लड़कियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैफिक जाम, रात को जगमग लाइट बनाने में, सब जैसे एकदम अपनी दुनिया। ज़रा अजनबियत का एहसास नहीं, कोई बेगानापन नहीं। अब्बास तबिश कहते हैं, मैं अपने आप में गहरा उतर गया शायद, मेरी सिर्फ से अलग हो गई मेरी रवानी।